हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रूही समर के सामने खड़ी थी, इसलिए उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसे साइड हटाने के लिए बोलते हुए समर ने कहा, रूही तुम बहुत सवाल करती हो, साइड हटो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जो तुम भी कॉफ़ी लेकर आओ, नहीं तो उसका मूड खराब हो जाएगा तो फिर बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है, इसलिए मैं अभी पहले जाकर बात करता हूँ, तुम प्लीज़ थोड़ी देर के बाद आना, क्योंकि मुझे तुम पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। इस बार रूही बुरा सा मुंह बनाकर नाराज होने की एक्टिंग करती हुई बोली, भरोसा नहीं है तो फिर गर्लफ्रेंड क्यों बनाया हुआ है मुझे नाम के लिए, वैसे भी कुछ बताते नहीं हो और अभी भी ऋषभ सर की तरह ही डांट रहे हो मुझे। मैंने ऐसा भी क्या सवाल किया, एक तो तुम मुझे एक भी जवाब नहीं देते हो सीधा। एक गहरी सांस लेते हुए समर ने कहा, रूही तुम्हें लगता है ये सही जगह है इस तरह फालतू की लड़ाई झगड़े के लिए, वो भी ऐसी छोटी बातों पर। रूही ने भी बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा, हाँ हाँ ठीक है जाओ, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे वर्कप्लेस पर मेरा इंप्रेशन खराब हो, इसलिए जाओ तुम, मैं आधे घंटे बाद आती हूँ कॉफ़ी लेकर, आई होप इतना टाइम काफ़ी होगा तुम्हारे लिए, और वैसे मुझे नहीं लगता कि सर मानने वाले हैं, मैं कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं यंग सर भी पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सर हैं कि किसी की बात ही नहीं सुनते। ऋषभ के बारे में सोचता हुआ समर बोला, हाँ वो कभी किसी की नहीं सुनता। उसके इस बात पर रूही ने शक भरी निगाहों से समर की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या मतलब है इस बात का, और तुम्हें कैसे इतना पता उनके बारे में, एक मिनट तुम उन्हें पहले से जानते हो क्या, आई मीन इससे पहले मिल चुके हो। रूही के इस सवाल पर समर को समझ आया कि वो एकदम ही क्या बोल गया, तो वो थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं वो तो बस हाँ कल स्टूडियो में मिले थे और वहाँ पर जो बात हुई थी उसके हिसाब से तुम्हारे ऋषभ सर को आ जाना था शूटिंग के लिए, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया, यहाँ तक कि बताया भी नहीं। जब हमारे मैनेजर ने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आज वो नहीं आ सकते, तुम्हें पता है इस वजह से प्रोडक्शन का कितना नुकसान होता है और बाकी सारे लोग भी जो साथ में काम करते हैं उनके बारे में तो सोचना चाहिए ना तुम्हारे सर को, लेकिन कोई बात नहीं वो हमेशा से ही सेल्फिश है। समर ने अपनी तरफ से पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए बता दिया जिससे कि रूही उससे और कोई सवाल ना करे, लेकिन उसने ऋषभ को सेल्फिश कहा। इस बात पर रूही एकदम ही ट्रिगर होते हुए बोली, हमेशा से सेल्फिश, आर यू श्योर तुम उन्हें पहले से नहीं जानते हो, क्योंकि जितना कैजुअली तुम उनका नाम ले रहे हो और उनके बारे में ये सारी चीज़ बोल रहे हो मुझे तो डाउट हो रहा है, और वैसे भी इतने सेल्फिश नहीं है मेरे सर, बस उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी मत बोलो, तुम्हें पता है ना मैं उनकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। इस बार समर में काफ़ी ज़्यादा बोरियत से कहा, हाँ हाँ पता है, सारी की सारी तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ और पागल लड़कियाँ ही उसके पीछे पागल हैं, और पता नहीं क्यों इतना सिर पर बिठा रखा है उसे, इसीलिए इतने नखरे दिखाता है। इस बार रूही उस पर गुस्सा करते हुए बोली, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, और तुम हो कि एक के बाद एक उनकी बुराई, वो भी मेरे सामने, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। समर भी जैसे उसके सामने हार मानने की एक्टिंग करता हुआ बोला, हाँ हाँ ठीक है कुछ नहीं बोलूँगा मैं, आप तुम्हारे रॉक स्टार हो, लेकिन मुझे अभी जाने दो, हम ये अपनी लड़ाई ना बाद में कभी कंटिन्यू कर लेंगे। इतना बोलकर समर ने अपने सामने हाथ बांधकर और गुस्से में मुंह फुलाकर खड़ी हुई रूही को अपने हाथ से साइड में किया और बेबसी से अपना सिर हिलाता हुआ उसे क्रॉस करके वहां से आगे निकल गया। उसके ऐसे बर्ताव पर रूही को बहुत ही गुस्सा आया, उसने पीछे मुड़कर समर की तरफ देखा और कुछ बोलती ही वाली थी, लेकिन फिर तभी उसे याद आया कि वो अभी फिलहाल स्टूडियो में है, तो वो कुछ बोल नहीं पाई और गुस्से में उसने अपने दांत पीसते हुए अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंधी और पैर पटकते हुए वहां से कैंटीन की तरफ ही चली गई। दूसरी तरफ समर इस तरह से परेशान होकर अपने आप से बात करता हुआ वापस उसी रूम की तरफ आया और उसने अपने आप से कहा, क्या पागल लड़की के चक्कर में पड़ गया हूँ मैं भी, पता नहीं क्यों हाँ बोला था मैंने इसे। इतना बोलते हुए समर ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे फिर से ऋषभ की आवाज़ सुनाई दी, अरे वाह क्या बात है तुम 5 मिनट में ही कॉफ़ी लेकर आ गई, ठीक से तो बनाई है ना या सिर्फ पानी गर्म करके ही ले आई हो। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखे बिना ही ये बात बोली, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला क्योंकि समर को समझ आ रहा था कि वो उसे रूही समझकर ये सब कुछ बोल रहा है, तो ऐसे में भला वो क्या ही जवाब देता। लेकिन दूसरी तरफ ऋषभ को जब कोई भी जवाब नहीं मिला तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि रूही तो इतनी देर में न जाने कितनी बातें बोल देती अपनी सफाई में और अभी वो कुछ भी नहीं बोली। तो ऋषभ ने पीछे पलटते हुए कहा, क्या हुआ रूही कुछ बोला नहीं। इतना बोलते हुए ऋषभ की नज़र जैसे ही वहां दरवाजे पर खड़े हुए समर पर पड़ी वो एकदम ही चुप हो गया और उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा से खोली, जैसे कि वो इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि सच में वहां दरवाजे पर उस वक्त रूही नहीं बल्कि समर खड़ा हुआ था। समर तुम यहाँ, ऋषभ ने थोड़ा सा अटकते हुए सवाल किया। समर एकदम चुपचाप ही वहां पर खड़ा था, लेकिन उसे ऋषभ के ऐसे इतने ज्यादा सरप्राइज रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो इधर उधर देखने लगा। उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद किया और आगे आते हुए बोला, हाँ मैं, और मैं वो उस स्टूडियो कंपनी की तरफ से आया हूँ। ऋषभ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए थोड़े फ्लर्टी अंदाज में कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिलने आए हो। उसके इस तरह से फ्लर्ट करने पर समर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ और अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हटा। उसे ऐसे देखकर ऋषभ अपनी जगह पर ही रुक गया और अपने दोनों हाथ बांधकर एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ ही देखने लगा। समर ने उसे इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो गुस्से में बोला, कुछ भी बकवास मत करो, मैं यहाँ पर काम से आया हूँ और तुम्हारी वजह से ही मुझे यहाँ पर आना पड़ा। समर की ये बात सुनकर ऋषभ के चेहरे की वो शरारत भरी मुस्कुराहट एकदम ही गायब हो गई और अपनी आईब्रो से कोड़कर कन्फ्यूजन से समर की तरफ देखते हुए ऋषभ बोला, मेरी वजह से? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कुछ और ही कहा था।